ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद उपस्थित हैं। तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पिछले वर्ष जुलाई में लागू हुए थे। पहलगाम आतंकी हमले के परिदृश्य में एक अन्य कड़ा कदम उठाते हुए भारत ने चेनाब नदी के बगलिहार बांध से पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोक दिया है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि सिंधु नदी से पानी के प्रवाह को रोकने संबंधी निर्णय के बाद बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी के प्रवाह को भी भारत ने रोक दिया है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल, नौसेना प्रमुख एडमिरल तथा सेना प्रमुख जनरल के साथ भी अलग अलग बैठकें की। ये बैठकें पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर हुई हैं। पाकिस्तानी हैकरों ने भारतीय रक्षा वेबसाइट को निशाना बनाया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान साइबर फोर्स समूह ने कथित तौर पर भारतीय सैन्य अभियंता सेवा तथा मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान से संवेदनशील डाटा तक पहुंच प्राप्त कर ली है। इससे पता चलता है कि हैकरों ने लॉग इन क्रेडेंशियल सहित रक्षा कर्मियों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके अलावा समूह ने आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट को भी खराब करने का प्रयास किया। वेबसाइट को पाकिस्तान के झंडे और अल खालिद टैंक का उपयोग करके खराब किया गया है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एजेंसियां किसी भी साइबर हमले का पता लगाने के लिए साइबर स्पेस की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। श्री पुतिन ने निर्दोष लोगों की मौत पर संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामले को इस महीने की 15 तारीख के लिए सूचीबद्ध किया है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने न्यायालय द्वारा कुछ चिंताएं व्यक्त किए जाने के बाद संशोधन अधिनियम के कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगाने का निर्णय लिया। वस्त्र और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को व्यापक रूप से गलत समझा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पारदर्शिता, सुशासन और जनहित सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुधार संचालित पहल है। आयोजन में उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को मजबूत करने तथा देश भर में समुदायों के उत्थान के लिए पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि 31 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने 5 वर्षों की अवधि में 7,772 याचिकाओं का अध्ययन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज तेलंगाना के सिरपुर कागजनगर में 3,900 करोड़ रुपए की लागत से कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले 3-4 वर्ष में तेलंगाना में 2,00,000 करोड़ रुपए की लागत की राजमार्ग परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन परियोजनाओं से कोठागुड़म और मुलुगु जैसे दूरदराज के जिलों से हैदराबाद तक तीव्र संपर्क स्थापित हो सकेगा।
राज्य का ट्राइबल जिला मुलुगु हो या कोठागुड़म, चाहे जिला आदिलाबाद हो या गढ़वाल राज्य के किसी कोने से हैदराबाद आना और जाना अब बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। हमारी सरकार ने पूरी तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों को काफी बढ़िया प्लानिंग करके जाल बिछाने की कोशिश की है।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकी अशडल्ला से जुड़े 2024 नीमराणा होटल फायरिंग मामले की जांच के लिए राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 10 स्थानों पर छापेमारी की। अभिकरण की जांच में पता चला है कि डल्ला के सहयोगी प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठनों के लिए धन उगाने के लिए आतंक और हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे दिन आज कबड्डी, तीरंदाजी और गतका के मुकाबले खेले गए। बालिकाओं के फुटबॉल मुकाबले में तमिलनाडु ने बिहार को 2-1 से हराया। ये मैच बेगूसराय के रिफाइनरी मैदान में खेला गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।